تو ہوں جن کے گنوں کے گان میں بے بردھمان مہان جن بچرے ہمارے دھیان میں. سمے سار پرماگم کی 14ویں گاتھا آرمبھ کی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان آتما بد اسپشٹادی بھاووں سے بھن ہے, یعنی اسے کرموں نے باندھا نہیں ہے, چھوا تک نہیں ہے, یہ نرنرکادی پریاؤں میں بھن بھن نہیں ہے, یہ اسنکھیات پردیسی اکھنڈ پنڈ ہے, یہ سدگنی ہانی بدھی سے بھی رہت ہے اور راگادی بھاووں سے رہت ہے. ایسے بھگوان آتما کو جو جانتے ہیں, وہ جاننے والے گیان کے انش کا نام ہے شدھ نئے. اب ان میں جو پانچ باتیں ہیں نا, اودھ اسپشٹ پہلا, تو یہ پر پدارتھوں سے بھنتا کی بات ہے. ویسے تو دنیا میں انت پر پدارتھ ہیں, لیکن ہم کو ایسا بہت اندر سے لگا ہوا ہے کہ آتما کو کرموں نے باندھ رکھا ہے, اور ہم نے کرم کی مہیما کے بہت گیت گائے ہیں اور سنے ہیں. ایسو کرم بڑو بل بان جگت میں پیرت ہے, ایسو کرم بڑو بل بان جگت میں پیرت ہے, پب نجے کے رانی انجنا اور گرب سے ہنومان, پر سگی ساس نے دیو نکارو کس بھی دھیرا کو پران جگت میں تیرت ہے, یہ تو کرم بڑھو بل بان جگت میں تیرت ہے. بہت گیت گائے ہم نے ایسے, بھگوان کے کم گائے ہوں کرموں کے زیادہ گائے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بھگوان آدی ناتھ کو نہیں چھوڑا, پارس ناتھ کو نہیں چھوڑا, پتھر برسائے, ایک برس تک دو روٹیوں کا انتظام نہیں ہونے دیا, یہ سب دیو کو کیوں, اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور بھگوان کے سامنے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے مل دشٹ گھنیرے کیو بہت بے حال سنیے صاحب میرے, ان کو نیک بگار میں کچھ نائی کیو جو دن کارن مہاراج بہو بدھ بیر لیو جو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ گاتھا کہنا چاہتی ہے میں کیوں, کہ بھگوان پارسناتھ کو آدیناتھ کو کرموں نے نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا ہوتا تو بھی ابھی سنسار میں ہوتے نا, موکش میں کیسے چلے گئے. یعنی کتنا بڑا پرمان ہے کہ کرموں نے انہیں چھوڑ دیا, تو کرموں کو انہیں چھوڑ دیا ہے نا, کہ وہ موکش میں ہیں اور ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا ہے. اور وہ ایک دن کی ایک گھٹنا گھٹی تھی کہ کچھ پتھر برسائے تھے کسی ویکتی نے دیش کے کارن, اس سے پارسناتھ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں تھا, کیونکہ وہ اتل بل والے تھے, بج بسب ناراض سہنن والے تھے, تو ان کو کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا ان پتھروں پتھروں سے, سمجھے نا. جیسے اپنے سے ہاتھ پہ ایسا کوئی کرے تو کچھ نہیں ہوتا نا, ایسا وہ پتھر اس افسر کا کوئی مطلب نہیں تھا. سمر نے کچھ بھی کیا ہو اور پدماوتی یہ دھرنے میں کیوں کچھ بھی بھاو آیا ہو اس کی رکشا کرنے کا, لیکن نہ اس نے کچھ بگاڑ سکتے تھے اور نہ وہ بچا سکتے تھے. یہ بات تو ایسی ہنسی جیسی لگتی ہے کہ میں آپ سے کہوں تو وہ اپنا بلی مہابلی کھلی, وہ بمبئی کے روڈ پہ جا رہا تھا تو ایک 8 برس کا لڑکا آیا اور اس نے اس کو اتنی پٹائی کی کہ 10 برس کا لڑکا آیا تو اس نے بچا لیا, نہیں تو نہ معلوم کیا ہو جاتا. تو ہنسیں گے نا, تو کیا بات کرتے ہو, وشو کے سرو شریشٹھ 23 پہلوان کیوں, जिसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, एक साथ आक्रमण करें तो भी। और तुम कहते हो 8 वर्ष के बच्चे ने इतनी पिटाई करी, और 10 वर्ष का न बचा लेते तो न मालूम क्या हो जाता, बड़ा अनर्थ हो जाता, वो मर जाता है। क्यों जी? जैसे वो 8 वर्ष का बच्चा महाबली खली के सामने साधारण आज है, ऐसे ही भगवान पारसनाथ के सामने कमत की हैसियत नहीं है। कमत तो भवनवासी दंतर ज्योतों में, देवों में है, भवनत्रक में जिसे बोलते हैं, और उसके दरवाजे पर तो सौधर्म इंद्र जैसे नाचते थे। एक एक रत्न के 10,000 देव सेवा करते हैं, उनकी एक एक सेवक से इनकी क्या तुलना है? क्यों? अब वज्र का शरीर है वो, 8 वर्ष का बालक क्या बिगाड़ लेता? वो खेल खेल रहा था, वो भी कुछ नहीं कहता होगा, हंस रहा होगा, मार रहा है तो मारने दो। वो महाबली भी वही करेगा जो पार्श्वनाथ किया था, तो कोई बच्चे को साड़ी फेंकेगा नहीं ऐसा? क्यों? तो बच्चे की चोट से क्या होना था? और दूसरा लड़का 10 वर्ष का आया, उसका बड़ा भाई, और वो रोक है, तो वो भी कोई अनुचित कहां है? भाई इतने बड़े आदमी का तुम अपमान क्यों कर रहा? मन चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अभिनय तो नहीं होनी चाहिए ना? क्यों? इसलिए अभिनय नहीं करे, इसके लिए उसने भी जो कुछ बना होगा उससे किया है, विकल्प किया है। इससे पारसनाथ की रक्षा की और पारसनाथ को मार दिया, ये पारसनाथ का अपमान है। ये तो ऐसी बात है पारसनाथ के बारे में कहना है। अपने समय साहब तो ये कहता है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। क्या जब वो ये बात आती है तो मैं एक बात बोलता हूं, थोड़ी सी कठोर है लेकिन समझने जैसी है, कि ऋषभदेव भगवान को 7 महीना तक अंतराय रहा, आहार नहीं मिला। तो बड़े बड़े लोग बहुत रिसर्च करते हैं, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, कि साहब वो किसी को आहार देने की विधि पता नहीं थी। सब लोग कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, होगा। मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। भरत चक्रवर्ती छायक समय दृष्टि से अब उन्हें भी पता नहीं था, बाहुबली को भी पता नहीं थी, नहीं होगी भाई, क्या करें? अब सौधर्मेंद्र तो कितनी कितनी जगह पंच कल्याण करा था, एक एक सौधर्मेंद्र सैकड़ों तीर्थंकरों के पंच कल्याण करा देता है, इतना लंबा उसका काल होता है, इतने में इतने तीर्थंकर हो जाते हैं, समझ में आए ना? और उन तीर्थंकरों का जिन्हें पंच कल्याण कराए थे तो उसे आहार दान की विधि पता नहीं होगी। और गर्भ में आने के 6 महीने से पहले हाजिरी में खड़ा था वो, माँ के पेट में रहे तो माँ के पेट की त्रिबली भंग ना हो जाए इसका इंतजाम कर रहा था और जब वे 83 लाख पूरब के थे तब रोजाना उनके नृत्य के लिए, मनोरंजन के लिए देवांगनाएं भेज भेज के व्यवस्था कर रहा था। और कहते हैं तीर्थंकर के कपड़े वपड़े भी स्वर्ग से ही आते हैं ना, सब व्यवस्था इंद्र ही करता है, पूरे जीवन है। अब उसे कुछ पता नहीं, अभी अपने मन को समझाने के लिए कुछ भी कह लो, हो सकता किसी का ध्यान उधर नहीं गया, वो बात हो सकती है, लेकिन एक दूसरे में ही कान खोजना ये कहां की समझदारी है? उनको तकलीफ हुई तो उनके कान उसमें तो खोजो, सारा देश निमित्त ही निमित्त का है, सारा उपादान का कोई गैर नहीं है। जो दंड हो रहा उसने कुछ नहीं किया, बुरी बात हो गई, मैंने किसी का विकार कुछ नहीं किया, इन्हें जबरदस्ती मेरे गली में आ पड़ गए करूं, जबरदस्ती आगे पड़े हैं, तूने राजद्वेष किए बिना कर्म बन सकते हैं? अंदर की तरफ देखने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मतलब सारी दुनिया की गलती क्योंकि उन्हें पता नहीं था, वो दंड भोग रहे हैं ऋषभदेव। अरे भाई उनके पल्ले में इतना पुण्य नहीं था कि 2 रेवड़ियां मिल जाए। अरे क्या बात करते हो, पुण्य की कमी थी? मैं भी कहता हूँ पुण्य की कोई कमी नहीं थी, तीर्थंकर प्रगति थी ना, लेकिन भैया वो तो 13वें पुनस्थान में उदय आती है, पर तीर्थंकर प्रकृति के उदय में रोटियां नहीं मिलती हैं। जब तुम रोटियां खाना बंद कर देते हो तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। शिवजी के कपला हाथ भी होते ना 13वें पुनस्थान में, भोजन तो नहीं करते थे, तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। हर कर्म का अपना अलग अलग काम है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। हमें असाता वेदनी कर्म का उदय है और हमें डाल में भयंकर दर्द है, ध्यान दीजिए कि, और वहां ऐसे कीर्ति कर्म का उदय है तो हजारों लोग जय के नारे लगा रहे। बोलो तो इस कीर्ति भी पुण्य है ना, तो वो बदल के डाल का दर्द दूर कर दे रहे ना। तो सुनिए, वो हर तायब का पुण्य अलग है। ऋषभदेव के इतना पुण्य था कि लोग देखते थे कि ये नंगे पैर हैं तो जूते चप्पल ला ला करके देते थे, कोई देखता था कि ये पैदल चल रहे हैं तो हाथी घोड़े ला करके देता था, कोई जो नंगे हैं तो कपड़े लाकर देता था। और शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि कुछ लोग तो अपनी कन्याएं भेंट करते थे कि गृहस्थी बैठा के साथ से रहो ना, काहे पैसे नंगे घूम रहे थे। और पुण्य के बिना ऐसी हालत में कोई अपनी लड़की लागे थे तो ये सारे पुण्य का उदय उनका था, तब तो लोग इतनी चीजें देने को तैयार खड़े थे ना। न देने वालों की कमी थी और न पुण्य की कमी थी, क्यों? लेकिन दो रोजियों का पुण्य नहीं था, ये पुण्य उस रोजियों में नहीं बदल सका कि नहीं नहीं साहब वो अंतराय कर्म का अंतराय हो गया। अंतराय तो अंतराय कर्म क्या है? पुण्य के पाप। घाटिया कर्म तो पुण्य होते ही नहीं, वो तो पाप ही रूप होते हैं। तो अंतराय हो गया माने तो मुनिराज को अंतराय हो गया, तो जिसके निमित्त से अंतराय हुआ माने बिल्ली रास्ता काट गई और कुछ हो गया, बच्चा रोने लग गया, जो भी होता है, तो सारा दोष बच्चे का ही है। और मम्मी तो बच्चे की पिटाई शुरू कर देती है, वो तो पिटाई करने से रोना बंद कर देगा कि और ज्यादा रोएगा। तो महाराज को अंतराय हो गया। अरे महाराज को अंतराय, महाराज के अंतराय कर्म के उदय से होगा या तेरे बच्चे के रोने से होगा? उपादान भी उनकी है पिता, और निमित्त भी अंतराय कर्म का उदय। क्यों? तू कौन होता है दूर का? तू तो बहिरंग निमित्त है। तो हमारी दृष्टि ना अंतरंग निमित्त पे है ना उपादान पर है, तो बहिरंग निमित्तों पर हमारी दृष्टि जाती है और हम उनसे ही राग द्वेष किया करते हैं। जो कुछ भी हमारा अच्छा बुरा होता है वो सब हम दूसरों के माथे मरने की हमारी आदत है। ये दाखा कहती है कि वो बिल्कुल गलत है। कर्म की तरफ से देखो तो भी और धर्म की तरफ से देखो तो भी। अब मैं एक बहुत मार्मिक बात आपसे और कहना चाहता हूं इसी संदर्भ में, इसी अवध स्पष्ट बोल के संदर्भ में, कि हमारा आपका जो भी संयोग है, कोई 10-5 साल की जिंदगी जिसकी होगी, कोई की 20 की, कोई की 25 की, कोई की जो भी होगी, उसमें कोई बहस ज्यादा का मुद्दा नहीं है। कोई भी आदमी जो यहां बैठा है वो 100 साल से अधिक नहीं जिएगा। हर एक से 4 वर्ष के भी होते हैं तो हो गए ना, यहां 4 वर्ष से कम के थोड़ी बैठे। आज से 100 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, गारंटी है। और ये प्रचलन खत्म होगा उसके पहले कोई मरने वाला नहीं, दो बार की गारंटी है। इतना ही तो वेरिएशन है, इससे ज्यादा तो नहीं है, अरबों वर्ष का तो नहीं है। अब इतने काल में भी जो हमारा आपका जो भी बचा है काल, मान लो 10 साल से, तो 10 साल काल में हम और आप कितने काल मिलते हैं? साल दो साल में एक आध बार, 2-4-5 दिन का समागम होता है। तो आप इसको, आप इसे 10 साल क्यों बोलते हो? 8 दिन का मिलाप 80 दिन बोलो ना, कि हमारा आपका साथ 80 दिन का है, ठीक है? अब 80 दिन का है तो यहां तो हम आ जाते हैं तो 24 घंटा आप हमारे साथ ही रहते होंगे और हम आपके साथ रहते होंगे। क्यों? आप हमारे साथ 24 घंटा रहे तो हमें पुसाए और हम आपके साथ रहे तो आपको पुसाए। क्यों? वो एक घंटे का हमारा आपका ये मिलन है ना, तो भी काय का मिलन है हम तत्व की बात सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तबीयत क्या है ये पूछने की तो मौके ही नहीं मिला अभी, क्यों? यानी मिलने नाम की चीज तो अभी भी नहीं हुई ना, एक घंटे में तो होने वाली नहीं है। अब यहां से उतर के 5 मिनट जाकर के घर रवाना होंगे, उसके बीच में जितने मिल जाए जितने नमस्ते हो जाए, असली तो हमारा आपका संयोग उतने काल का है। क्यों? अब लगा लो हमारे 10 साल की उम्र में कितना होगा, एक घंटा भी नहीं बैठेगा कि हम और आप एक घंटा भी मिले। अब एक घंटे के संयोग के लिए बनारसी दास ने लिखा, हम बैठे अपनी मौन सों और 10 दिन के मेहमान जगत में बोल बिगाड़े कौन सो। अब एक घंटे 8 घंटे का जो संयोग है, अब उसमें चाहे लड़ लो, चाहे झगड़ लो, चाहे प्रेम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, रात कर लो, चाहे देश कर लो, क्यों क्या करना? तो फिर लोग कहते इससे तो अच्छा यही है ना कि हम क्या कोई लड़े झगड़े, क्यों द्वेष करें, हम तो अपने प्रेम से रहें, राग से करें। ये जैन धर्म नहीं है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत मार्मिक है, ध्यान से सुनना। हम यही तो करते आए अनादिकाल से, या तो राग या द्वेष, या तो राग या द्वेष किसी से भी। वो कहते हैं कि जब तुम किसी से राग छोड़ो तो ये ध्यान रखो कि उससे द्वेष ना हो जाए, और जब द्वेष छोड़ो तो ये ध्यान रखो कि राग ना हो जाए, तो कोई धर्म की बात होगी। धर्म ये कहता है, धर्म ये नहीं कहता है जैन धर्म कम से कम कि राग द्वेष छोड़ के राग करो, वो तो और बुरा है। यह राग राग दहे लिखा कि नहीं लिखा, जिससे द्वेष होता है उससे तो हम बच के रहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, वो राग वाले लोग नजदीक रहते हैं, क्यों? तो वहां ज्यादा चांस है बिगड़ने के। फिर कहता हूं ध्यान से सुनना बात, कि राग छोड़े कम हो रहे कदापित किसी से तो उससे द्वेष न हो जाए। भाई भाई प्रेम से रहते थे, अब किसी बात में अनबन हो गई तो राग कम हो गया। अभी साल से कभी ना शादी वाय में गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, क्यों? ऐसा होता कि नहीं होता है? तो राग कम हो गया तो फिर हम मुख चले जाएंगे ना, वितराग हो गए कि नहीं? अरे वो उससे देश हो जाता है, और जैसे देश कम करते हैं, माफी मांग ली हमने तो परिश्रम के दिन में, क्षमा वाणी के दिन, और अब तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, और एक साथ घूमने गए थे, और एक साथ खाने पीने गए थे, और मजा मोहन मरिया सिनेमा भी एक साथ गए थे, तो मेरे कम से कम सिनेमा से तो बचे थे, देश ही अच्छा था। ये जो समय सार है तो प्रचन सार है, प्रचन सार की खासकर सातवीं छठवीं गाथा में, पांचवीं गाथा में उपसम्यामि सम्मम दत्तो निर्माण संपत्ति, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त करता हूं जिससे निर्माण की संपत्ति प्राप्त होगी। तो उनका साम्य भाव क्या है? तो जवाब दिया, मोह क्षोभ ईणो परिणामो अपणो समो, जो मोह और क्षोभ से रहत आत्मा का परिणाम है। माने अपनत्व बुद्धि और राग और द्वेष, इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है। बस हम बाजी पलटा पलटी करते रहते हैं, राग से द्वेष और द्वेष से राग, राग से द्वेष और द्वेष से राग, और जब तक पर में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि रहेगी तब तक यही होने वाला है, 100 सिर के हो जाना, कुछ नहीं कर सकते आप। पहले तो ये निर्णय करोगे मैं नहीं हूं, मेरे और इसके बीच में बजर की दीवार है, ये मेरा भला बुरा कर ही नहीं सकता, एक कभी 3 लोग में मेरा हो ही नहीं सकता, मैं हो ही नहीं सकता। तो ये तत्व ज्ञान है जो गुरुदेव श्री ने हमें दिया महाभाग्य से, इसके बिना राग द्वेष किसी कीमत पर कम नहीं होंगे, और इस मान्यता के साथ राग द्वेष कम हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मान्यता जिस दिन होती है सच्ची, उसी दिन अनंतानंदी राग द्वेष चले जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऋषभ देव भगवान को आहार नहीं मिला, तो हम दूसरे की गलती, उनकी कोई गलती उनका नहीं था, जो कुछ भी निमित्त, तो उनके कर्म का उदय ऐसा नहीं था कि जिससे भोजन का संयोग मिले, ये अंतरंग निमित्त था, और तत्समय की योग्यता ऐसी नहीं थी, ये उपादान की बात है ना। अब अपने एक साल, क्या एक साल, उनको भोजन का विकल्प जरूर आया, भूख भी लगी होगी ये नहीं कहता हूं, लेकिन वज्रसभ नारायण चंदन वाले को क्या,
यदि 50 साल भी भोजन नहीं मिलता तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, और तकलीफ से इसने तरफ जाते ऐसा कुछ नहीं है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, कम हो जाता है ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे सुने मेरे वज्र सब नाराज सन के थे, मिला मिला नहीं मिला तो नहीं मिला, उसमें क्या गजब हो गया। अरे बाहुबली तो वैसे ही खड़े रहे थे, उन्हें तो विकल्प भी नहीं आया था, अभी तो आहार को निकले ही नहीं थे साल भर तक समझ गए ना। यानी हम हमेशा दूसरे के पुराणों में से भी दूसरे के ही दोष निकालते हैं, जो कुछ भी जहां जैसा हो रहा है हमारे जो हमारा हो रहा है उसके कारण हम में विद्यमान है, और उसके पूरे जिम्मेवार हम हैं। इसलिए समय सार में एक कलश आता है, यह पर्ण मति से करता, कि जो जिस पर्याय रूप परिणमित होता है उस पर्याय का वो ही करता है। ये इसलिए अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो कहेंगे कि अकर्ता वा अकर्ता क्यों। तो भैया अभी जो दूसरे को कर्ता मान रहा है अपने सुख दुख का, वहां से हटके मैं करता हूं यहां तक तो आए, तो फिर कहेंगे पर्याय का कर्ता पर्याय है, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं तो पर्याय नहीं हूं। वो अकर्ता का मतलब तो ये है, मेरा कर्ता मैं नहीं हूं, इसका मतलब पर मेरा कर्ता है ऐसा अर्थ नहीं है उसका। क्या हम सच्चे हृदय से अपने हाथी पर हाथ रखेंगे, हमने गुरुदेव का इतने दिनों तक सुना है वो तत्व ज्ञान अपने पास है, और हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमको इस भव में ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है ना। अंदर से अपने गदगद हुए बिना नहीं रहते ना, क्यों बहुत वहां हम बड़े पुण्यशाली हैं कि हमको गुरुदेव की काल में पैदा हो गए और उनका सुख समागम मिल गया और उनसे जो तत्व ज्ञान जिंदगी में फैल गया वो हमारे कान में आ गया। तो ये तत्व ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा का सिद्धे बना है क्या है? हम अपने सुख दुख के जिम्मेवार, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता के जिम्मेवार हम दूसरे को नहीं माने। हाँ नवी जनी साहब, हमने एक बार अंतर में झांक के देखना चाहिए। देखो जमाना 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 ये भी तो यहां नहीं चलेगा, जमाना महाराज के पास जाओ वहां जमाना चलेगा। क्यों चलेगा जमाना वहां? क्योंकि वो क्रिया की बात करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जमाना है और पानी मिलता नहीं है, कुएं का पानी सब कीड़े पड़ गए हैं, अब क्या करें, वो बेचनी कहां डालें, और फिर वो आप 50 तरकीब वो महाराज वाले मामले में चलेंगी, हमारे मामले में नहीं चल सकती है। क्यों? कि हमारे तो कहते तुम्हें अंदर में सिर्फ मान्यता बदलनी है, उसमें दुनिया क्या करेगी। परद्रुव का मैं कर्ता धरता नहीं हूं, परद्रुव मेरा कर्ता धरता नहीं है, परद्रुव का जो भी मेरा भला बुरा हुआ वो मेरे कारण हुआ, पर का वो पर के कारण हुआ, और ऐसे मानने में दुनिया में क्या खराबी है बोले। इसका नाम है मिथ्यात्व का छोड़ना, अनंत हनुमान जी के सार का छोड़ना, और इसमें दुनिया का क्या दोष है, इसमें द्रिविक्षित काल भाव का क्या फर्क पड़ता है। यही तो कहा ना शास्त्र में पंचम काल में संयम नहीं होता, एक गुण स्थान के ऊपर मतलब सब छात्र के ऊपर नहीं जाते, लेकिन संबंध असम नहीं होता ये तो नहीं कहा ना। अब इसका मतलब जमाने का असर संबंध असम पर तो नहीं है ना, तो ये मान्यता तो संबंध असम के लिए जरूरी है, ये सांस्कृतिक शांति तो संबंध असम प्राप्त होती है। तो हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे हम कितना ही उपदेश दें कि देश मत करो देश मत करो, तो देश मत करो वाले प्रेम से रहो भाई यहां आ जाते हैं, तो उसे क्या हुआ, बस उसने देश छुड़ा के राग किया, राग छुड़ा के देश किया, और वास्तव में वो देश नहीं करेगा सवाल नहीं है, हम जिससे राग करेंगे उसके प्रति जो प्रतिकूल परिवर्तन करेगा उससे भी हमारा देश हो जाएगा। अभी हम अपने भाई से राग देश करते हैं तो उसके हम राग करने लगेंगे तो उसके प्रति जो देश करेगा उससे हम देश करने लग जाएंगे, वो दुष्चक्र छूट नहीं सकता। इसलिए ये जो तत्व ज्ञान है वो सबसे पहले कहते परद्रव्य, भले ही यहां तो कर्म की बात लिखी कि कर्म ने आत्मा को बांधा नहीं है और कर्म ने आत्मा को छुआ नहीं है, लेकिन कर्म ये सभी परद्रव्यों का प्रतिनिधि है, क्योंकि ये 5 बोलों में एक ही बोल परद्रव्य संबंधी है। कर्म की बात क्यों ली, ये नौ शरीर की बात क्यों नहीं ली? फिर आप कहोगे छूट जाएंगे इस जेल से 5-10 साल में। लेकिन वो जो 8 कर्म वाला जो कारवान शरीर है वो तो विग्रह गति में भी साथ रहता है। आपके समझे विग्रह गति में भी साथ रहता है वो कारवान शरीर। तो अनादि काल से उससे तुम 1 सेकंड को नहीं छूटे, ऐसा जो तुम्हारे अंदर जमा हुआ है वो तो कहते अनादि काल से उस कर्म ने तुमको छुआ तक नहीं है, बांधना तो बहुत दूर की बात है। अबद्ध माने बंधा नहीं है वो, तो अस्पष्ट माने छुआ नहीं है। तो क्या प्रमाण है कि छुआ नहीं है? रमेश जी है कोई? अरे हम बताते अभी आज छूने के लिए जो जिसको छुए उन दोनों में स्पर्श गुण चाहिए। स्पर्श गुण के बिना छूना नहीं होता। आप सुनिए ना, आकाश को छुआ तो स्पर्श गुण अकेले पुद्गल में है, तो जीव में स्पर्श गुण ही नहीं है तो उसे कोई कैसे छू सकता है और वो किसी को कैसे छू सकता है? समझ गए ना। तो और जब जो छुआ ही नहीं है तो बांधे वाली बात कहां से आ सकती है? है? अभी लोक में क्या होता है कि एक हत्या हो गई और हत्या का आरोप हम पर लग गया तो हम ये सिद्ध करते हैं कि 39 में हम थे ही नहीं है। और यदि ये सिद्ध हो जाए किसी जबरदस्त प्रूफ से कि हम यहां नहीं थे तो गारंटी से वो उस हत्या के अपराध से सजा से मुक्त हो सकते हैं ना। गारंटी माने क्या? कि हम उस समय विदेश में थे और हमारे पासपोर्ट पर किस तारीख को हम गए और किस तारीख को लौट के आए दोनों की सील सिक्का मौजूद है। क्यों? अब वो कहे कि साहब मैं दिल्ली में एक हत्या इनने उसे कर दी, उसे मार डाला। तो हमें भी वो सिद्ध कर दे रहे हैं कि हम उस वक्त यहां थे ही नहीं तो बात खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही कहते हैं कि जब हम ये सिद्ध हो जाए कि कर्म ने हमको छुआ तक नहीं तो बाधा वाली बात तो अपने आप खत्म हो जाती है ना, इसलिए इसमें नहीं छूने से बात शुरू की। वो अकेला अबद्ध ही दे सकते थे ना, अबद्ध अस्पष्ट क्यों लगा? इसने छुआ तक नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई छू सके, छू नहीं सकता, ऐसी शक्ति है उसमें। क्यों? स्पर्श नाम की गुण नहीं है कि जिसकी वजह से कोई छू सके। अब ऐसा नहीं है तो कहते भगवान आत्मा को आज तक इसने छुआ ही नहीं है और इसलिए बंधा ही नहीं है। अब बंधा ही नहीं है तो लोक में जो बंधन कहा जाता है वो बंधन कैसा है जरा समझना आप। वो बंधन ऐसा है कि अपन लोग यहां बैठे हैं, प्रचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी कोई आदमी आ गए तो सामने नीचे जो बाहर निकलने का गेट है उसमें ताला लगा गया और चला जाए। और जब अपन लोग प्रवचन खत्म हो घर जाने का नंबर आज भी 5 मिनट पहले आगे खोल दे तो अपन बताओ बंधे थे, छिके थे कि नहीं छिके थे? ताला तो लगा था, ये तो बात पक्की है ना। लेकिन हमें कहीं जाने ही नहीं है तो बंधन काएगा? बंधन तो जब हो कि हमें जाना हो और हम जा नहीं सके। आप जानते हैं तो समुद्र विजय राजा के छोटे भाई थे वसुदेव, श्री कृष्ण के पिताजी, इन्हें वासुदेव कहते हैं ना, तो वसुदेव का बेटा होने से वासुदेव कहते हैं। उनका क्या नाम था? वसुदेव। वो कामदेव थे, बहुत सुंदर थे, वो बहुत सुंदर थे तो वे शहर में जाया करते थे तो बहुत लड़कियां उन्हें देख देख के बेहोश हो जाती थी, आगे भी पागल जैसी हो जाती थी और बहुत ही वो गड़बड़ी हो जाती थी। तो जनता ने शिकायत करी समुद्र विजय के यहां आकर के, पढ़ा होगा आपने कि साहब आपके राज भाई साहब छोटे निकलते हैं तो सब हमारे यहां गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप क्या करें, हम तो आपकी शिकायत कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उन्हें अपराध है, वे उनने कोई गलती की, उनने किसी से छेड़खानी की, ऐसा तो हम कह नहीं रहे। हम कोई वसुदेव की शिकायत नहीं कर रहे, हम तो अपनी प्रॉब्लम तो उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बढ़िया बगीचा खाई, वसुदेव को बुला के कहा कि तुम क्यों चाय जहां घूमते फिरते हो, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया अभी, उसके लिए उनके हिसाब से बाकी से चेंजेज करवाए, परिवर्तन करवाए, सब बिल्कुल बढ़िया है, सब तरह के खेल मेल जो उन्हें करना था वो सब व्यवस्था उसने करवाई। और ये कहा कि आप इसमें किधर ही घूमा करें, और सारा आपका जो सारा मतलब खेल कूद जो भी आपको करना है वो आपके लिए बनाया है स्पेशल आपने, वो बहुत बढ़िया है। क्यों भाई साहब ने मेरे लिए इतना इंतजाम किया, और बरसों तक वो बहुत आनंद से वहां रहे और उस बगीचे में रहे। अब एक दिन उन्हें निकल पाया बाहर निकलने जाने का, तो बाहर निकलने लगे दरबार ने रोक लिया, क्या बाहर नहीं जा सकते, क्यों कि महाराजा की आज्ञा है तो इनको बाहर मत जाने देना। तो उस दिन उन्हें पता चला कि मेरे को यहां कैद किया गया है, मैं इस एरिए के बाहर नहीं जा सकता हूं, समझ में है ना। उस दिन वो उन्हें पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा, और वो उसी दिन वहां से भाग गए भेष बदल के, और फिर समुद्र विजय ने बहुत खुजवाया, पता ही नहीं चला, मिला ही नहीं, समझे ना। तो इस तरह कहां तो समुद्र विजय थे मालूम, और ये यहां कमथरा में कहां से आ गए, ऐसे घूमते घामते आ गए करके, और फिर बस कामदेव तो थे, जहां मौका है वहां शादी कर ली, रहने लगे, देती है शादी होगी, जो हुआ सो हुआ। मैं ज्यादा लंबा किस्सा नहीं सुनाना चाहता, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बंधन माने क्या, और उस दिन उनको कितना अंदर फीलिंग हुआ कि मैं बंधा हूं, और उसके पहले कुछ नहीं था। तो ये तो बंधन तो जैसे कि गाय के गले में रस्सी डालते तो रस्सी रस्सी से बनती है, गाय से रस्सी बनती ही नहीं है, जो गांठ जो लगती है वो रस्सी की रस्सी में लगती है, और गाय को उसके जाने ही नहीं, हो रात भर आराम से बैठना है अपनी जगह पर, खाना पीना मिल गया है अब जाने ही नहीं है, तो काय की बंधी है, काय की खुली है, जब जाने का समय आएगा तब खोल ही देंगे। कर्म बंध ऐसा कर्म बंध है, कुछ नहीं है, आत्मा को तो छुआ ही नहीं है उसने, काल में है ना, लेकिन एक लिमिटेड काल तक, जैसे मान लो मनुष्य भव आयु कर्म का उदय है, तो 60 वर्ष 70-80 वर्ष तक मुझे इस मनुष्य देह के साथ रहना है, काल में है ना, तो मैं मेरे लिए जेल हो गई, लेकिन मैं तो उल्टा है, मैं जेल में से छूटना नहीं चाहता, मैं तो इंतजाम करता हूं, यदि मैं जेल से छुट्टी मिलने की बात करता हूं भाई साहब मुझे नहीं जाना, मैं मुझे तो इसमें जाना दो, जैसे भी हो, कि बहुत बीमारियां हो गई, सड़ गई जल गई, ये सभी गली में जैसे भी हो मैं यही पड़ा रहूंगा, कहा बंधन है बोलिया, बंधन तो तेरे इसमें एकत्व बुद्धि का है, बंधन तो तेरे इसमें राखता है, इसलिए कहते हैं कर्मों ने तेरे को बांधा ही नहीं है, कर्मों ने तेरे को छुए ही नहीं है, ये पहली बात है कि पर पदार्थों तेरे से कोई संबंध नहीं है। देखो ये समय सार में शुरू से लेकर चार तरह की चीजों का निषेध किया है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, और पर को जानने वाली बात है वो भी आई है, वो तो ये उसमें आई, इस रूप में आई है कि ये सारा जगत इसके ज्ञान का गेय बनता है, और इनमें से ही फिर वो किसी में एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है। तो जैसे मैं कहते हैं उसे जानने में ही नहीं आता, उसे जानने में ही नहीं आता ना, ख्याल में आई ना, तो वो एकत्व नहीं स्थापित करता, तो इसलिए उस ज्ञान को हम दोष देने लगते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है, हमारा 25 वर्ष का जवान बेटा है, और वो सिर्फ इसलिए कि उसे लड़कियां दिखाई देती हैं और इसीलिए उसको विकृति होती है, ये बात सही है क्यों, और बस हम उसे ऐसा इंतजाम कर दें कोई लड़की उसे जिंदगी में कभी दिखे ही नहीं तो फिर बिल्कुल उसको कोई परेशानी होगी नहीं, क्यों उसके समझे ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, अरे वो जो कुछ खराब ही वो तो उसके अंदर है, वो जवानी का है, शरीर का मान लो, आत्मा का मान लो, जो भी समझ लो, वो तो बहुत बाहर में तमात्र है, उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे खाली कर देने से कुछ नहीं होगा, पर वो भी वृषदेव के साथ बाड़ा तोड़ के भागेगा, क्यों समझे, हम उस निमित्तों से दूर करके अपने को ये समझने लगना चाहते कि हमारा काम हो गया। और जब निमित्तों को दूर करके तुम्हारे हाथ में है क्या जो तुम कर दो, सारी दुनिया को औरतों से खाली कर दोगे तुम, पहले अपने घर को खाली कर दो, पहले अपनी मम्मी को भगाओ, अपनी बहन को भगाओ, अपनी दादी को भगाओ, भाई भाभियों को भगाओ, कर दोगे? अरे हर घर में वेद निमित्त तो हर घर में मौजूद रहेंगे। क्यों? यदि कोई सदाचारी रहेगा तो अपनी योग्यता से रहेगा, और भ्रष्ट होगा तो अपनी योग्यता से भ्रष्ट होगा। मेरे तरफ समझे, बहुत से लोग कहते हैं कि जब अपने घर में ऐसे गंदे गंदे चित्र लगाए हैं इसलिए ऐसा होगा। पहले के जमाने में ऐसा कुंद कुंद का चित्र लगाते थे, महाराणा प्रताप का लगाते थे, यही संतान होती थी, और हमने गंदे गंदे चित्र लगा लिए तो हमारे देखेंगी माता गर्भवती माता पिता तो उससे कितना खराब असर पड़ेगा, बोलते कि नहीं बोलते है? मैं उल्टा कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि घर के लोग बिगड़ जाएंगे इन चित्रों से। अरे ये बिगड़ गए इसलिए ये चित्र लगे। बिगड़े पहले, चित्र बाद में लगे, क्योंकि बिगड़े लोगों ने लगाए जो उनकी रुचि के दो तक है। क्या उनने ये पसंद किए हैं? मेरा मतलब समझे ना, इनसे नहीं बिगड़ेंगे ये, तो सिर्फ वो बिगड़े हुए लोग हैं ये बताता है, बताते हैं, इसके ज्ञान को बताने वाले हैं, बाद की बात नहीं है ये। तो ये कहते हैं कि आत्मा को कर्मों ने छुआ ही नहीं है, कर्मों से बंधा ही नहीं है। पहले इसलिए सीधी सच्चा इसका अर्थ इतना ही नहीं है, इसका अर्थ इतना है कि पर से मतलब कर्म माने पर, बस पर, पर दे उसे पर जीत लिया है। इन सब से हमारे आत्मा का बंधने और छूने का माने किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यदि सिर्फ तुम इन्हें जानो और इसके बाद इन चार में से कोई संबंध स्थापित नहीं करो तो उसमें रंच मात्र भी अपराध नहीं है, और रंच मात्र भी उससे बंध नहीं है। यदि होता तो अरंत भगवान को, सिद्ध भगवान को सबसे ज्यादा बंध होता, क्योंकि सारा लोका लोक को जानते हैं कि नहीं जानते है? तो निषेध तो वहां करना है, हाँ, इनमें एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व का। तो इसी को कभी कभी हम इस भाषा में बात करने लगते हैं कि अभी तू उधर को गया तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा, तूने उस घर की तरफ देखा क्यों, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो हम जानने और देखने का निषेध वास्तव में नहीं है। यदि उसको विकृति नहीं हो वो जानने देखने से तो हमें बिल्कुल रस नहीं है उसे जानना देखना बंद करने से। तो वो भी लिखा हो तो उसका अर्थ है कि एकत्वमत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ना ही है। तो इन दो द्रव्यों के बीच में मैं जो एकत्व की बुद्धि है उसको तोड़ना है। देखो इसमें आगे आगे के बोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बोल है अबद्ध पुट्ठम और अनन्यम, मैं टीका बाद में पढ़ूंगा, बहुत विस्तार से बात करूंगा, आठ दिन में यही गाथा चलानी है। तो अनन्य का मतलब क्या है? ये अबद्ध पुट्ठ अनन्य, देखो ये होती है, एक होती है पृथकता, एक होती है अन्यता। तो जहां प्रदेश अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं पृथकता, और जहां प्रदेश तो होते हैं एक और परिभाषाएं भाव होता है अलग अलग, जब भाव भेद होता है उसे बोलते हैं अन्यता। विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम है ना, अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है। तो ये जो बात हुई अबद्ध स्पष्ट का बोल, ये तो विभक्त प्रदेशत्व का पृथकत्व का है, और अब दूसरा अनन्य है जो अन्य अन्य वाला है बोल। तो ये उसमें पहले में क्या था? पहले में तो कहते हैं कि मैं पृथक हूं और तुम पृथक हो, इसका मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चारों से हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। अब इसमें क्या कहते हैं अन्य अन्य में? एक ही द्रव्य के भीतर ज्ञान अन्य है और दर्शन अन्य है, और आत्मा की दृष्टि से दोनों अनन्य है, मारीच अन्य है और महावीर अन्य है, इसका नाम हो गया अन्य अन्य। और मारीच ही महावीर है और महावीर ही मारीच है, इसका नाम हो गया अनन्य। मतलब एक ही द्रव्य के बीच में ये बात घटित होती है। तो यहां खासकर जो उदाहरण दिया है वो तो नर नारकादि पर्याय, मैंने बोला कल प्रवचन सार में भी दिया है ये तत्व प्रज्ञापन के शुरू में कि नार की अन्न है और देव अन्न है। अब एक देव मर के नार की हुआ तो कहते वो जो देव था ये वो ही ये है, मनुष्य हुआ समझे ना, जो स्वर्ग में स्वर्ग में थे भगवान महावीर ये वो ही है, ये हो गया अनंत। तो ये मनुष्य आदि पर्याय है ना, इसको बोलते आसमान जाति द्रव्य पर्याय। तो इनमें अन्य अन्य मानना और अनन्य मानना, तो अन्य अन्य मानोगे तो राग द्वेष पैदा होगा और अनन्य मानोगे तो राग द्वेष पैदा नहीं होगा। कैसे देखो, जैसे अभी बताया ना कि कर्म ने मुझे बांधा है, तुमने मुझे दुखी सुखी किया तो राग द्वेष होते हैं ना, और ये मान लो कि नहीं किया तो नहीं होंगे। अब मारीच अन्य है और महावीर अन्य है तो मारीच के प्रति द्वेष होगा। हमारे पहले तीर्थंकर का जिसने विरोध किया, मैं आपसे बोलता हूं कि गुरुदेव श्री को कोई गाली दे रहे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पर आदिनाथ को दरवाजे पर खड़े होकर समोषण तक कहे जो इंद्रजालिया है, जादूगर है, तुम्हें जो धोखे में फंसाता है, तो उस पर कम गुस्सा आना चाहिए? तो मारी इतने वही काम तो किया था ना। यदि आदिनाथ अपने हैं और आज रात से अपन को भक्ति है, भक्ति माने राज, तो फिर मारी से देश हो गया ही ना, और महावीर की बात आएगी तो अपने भाई भगवान है, तो विष्णु तीर्थंकर है, ये दिव्य धुनी जो आज हमारे पास है वो उन्हीं की है, दूसरे की है ही नहीं। तो इस हिसाब से महावीर के प्रति राग हुए बिना रहेगा नहीं। तो हम मारीच और राग अब अन्य अन्य मानेंगे तो निश्चित रूप से हमें राग द्वेष होगा। अब क्या भैया क्या बात करते हो, क्या देश करते हो, मारी से श्रम नहीं आती अपने 24 में तीर्थ संख्या मारी थी तो महावीर बने हैं ना, क्या देश करते हो मारी से, क्या देश करते हो और महावीर से क्या राग करते हो? 900 चूही मार तला बिलाई सबको बैठी, ये बेग है जिन्होंने आदिनाथ का इतना विरोध किया था, समझ गए ना। तो जब हम मारी तो महावीर को अन्य अन्य मानेंगे तो राग देश होगा, और दोनों को एक ही मानेंगे तो न राग होगा न देश होगा। तो वो कहते हैं आत्मा अनन्य है ये जानो तुम, समझे ना, क्योंकि वो ही आत्मा। तो जो मारीच की जो पर्याय थी, जो शनि का संयोग था और जोड़ी था, उनको अलग कर दो, और जो देवगति का थी और महावीर का जो संयोग है उन्हें अलग कर दो, अकेले उस आत्मा को देखें जो दोनों में कॉमन था, वो ये देखा जा सकता है ना कि दोनों को में जो कॉमन था। जरा से ये तो बहुत लंबा काल हो गया तो आपको कुछ पता नहीं लगता होगा, लेकिन गौतम स्वामी की लेवल ना समझे, गौतम स्वामी का समझ में आया कि नहीं है कि गौतम स्वामी महावीर के नंबर एक के शत्रु थे, क्यों अपने 500 शिष्यों के साथ जैन धर्म को तो नहीं मानते थे ना, जैने तक दर्शन में थे क्या नहीं थे, पर अभी समझ लिए मिथ्या दृष्टि थे और वो सबके विरोध करते थे। तो अब वो गौतम के अंदर बन गए, अब अकेले उस गौतम को देखोगे जो विरोध करता था तो देश आएगा आपको, अकेले गौतम को देखो गंधर्व को तो राग आएगा, क्या है वो याद नहीं रहे इन दोनों में फर्क क्या है, क्यों तो हम जन्म से उनको हमें आया करता है। अब बिल्कुल एक ही अवस्था में आपने देखा कि नहीं देखा, कल तक जो विरोध करता था और आज तक वो विरोध बंद करके और कहता है साहब ने बहुत जिंदगी खराब की, आपका विरोध किया, अपने से आकर के सब बताता है, अब कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो छोटे छोटे एक समय की पर्याय, पर्याय की तरफ नहीं देखना, पलट जाती है पर्याय, पलट जाती है क्या नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि तुम अन्य अन्य मत देखो, उस भगवान आत्मा को अनन्य देखो। अनन्य देखो माने उनमें जो बात अनन्य है हर पर्याय में एक सी है, उसे देखो तो वो एक चीज देखो उसका नाम आत्मा है। देखो जरा समझना, वो ये नहीं अनुस्थिति से रचित प्रवाह पर्याय आत्मा में नहीं है और पर्यायों का प्रवाह आत्मा में है। अनुस्थिति से रचित प्रवाह ख्याल में है ना, अरे वो अनन्य है ना। तो हर पर्याय में जो एक सा है अनादि से लेकर अनंत काल तक, वो द्रव्य है कि नहीं है, काल की दृष्टि से द्रव्य है कि नहीं है। तो जो पर्यायों की अनन्यता वो द्रव्य का लक्षण है। तो मेरा भगवान आत्मा अनन्य है, अन्य अन्य नहीं है, समझ गए। ये राजनीति में आप रोजाना देखते हैं कि आज बिल्कुल दोस्त हैं और कल एकदम शत्रु हो जाते हैं, फिर कभी दूसरे मुझसे मिलने लगते हैं, रोज से मिलने लगते हैं। आज मायावती से चर्चा हो रही है, कल मुलायम सिंह से चर्चा होने लगती है, तो कल कांग्रेस का विरोध होने लगता है, कल कांग्रेस के तो डोरी डाले जाने लगते हैं। क्या होता रहता है दिन रात, एक मिनट में शत्रु एक मिनट में मित्र। तो कहते राजनीति में कोई शत्रु मित्र नहीं होता, बोलते कि नहीं बोलते। तो मैंने कहा अपने धर्म से बड़े हो गए वे लोग, हम तो ऐसी शत्रुता बांध के बैठ गए, इस भव की भव में खत्म नहीं कर सकते और अगले भव में ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और वो तो एक साल में बदल देते हैं कि राजनीति में कोई शत्रु मित्र नहीं होता, परमानेंट कोई शत्रु मित्र नहीं होता, बोलते कि नहीं बोलते। जैन धर्म तो कहता है कि न कोई परमानेंट शत्रु मित्र होता है और न टेम्परेरी होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि जो वो होता है वो मैं हूं नहीं, मैं उससे पार हूं, मैं उससे परे हूं। इसका नाम है अनन्य। अनन्य का बोल अंदर का बोल है और अवध स्पष्ट का बोल बाहर का बोल है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, आगे विस्तार से टीका में अपन चर्चा करेंगे। तो एक दूसरा बोल हुआ, अभी तीसरा बोल है वो, और एक एक बोल आगे आगे के इससे ज्यादा वो है, कठिन है। देखो क्या है, तीसरा बोल है नबद स्पष्ट अनन्य और नियत। अब ये जो नियत बोल है ये बहुत कठिन है। क्या है इसका सीधा सच्चा तो बता दूं कि सद्गुणि हानि वृद्धि आत्मा में नहीं है, ऐसा कहता है। अरे सद्गुणि हानि वृद्धि भगवान जाने क्या है, क्यों जितना आप जानते उस बारे में उतना ही हम जानते। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि आत्मा के हर गुण में प्रति समय सद्गुणी हानि और सद्गुणी वृद्धि निरंतर हुआ करती है। सद्गुणी माने कैसी कैसी, संख्यात गुणी असंख्यात गुणी अनंत गुणी, संख्यात भाग असंख्यात भाग अनंत भाग, छह हो गए ना, कि हानि ऐसी छह वृद्धि इस बारह। अब ये 24 घंटा होती रहती है। तो वो कहते हैं कि ये निरंतर परिवर्तनशील बात है ना, कोई परिवर्तन वाले पर तुम अपना उपयोग एकाग्र करोगे तो चित्त में चंचलता बनी रहेगी, एकाग्रता नहीं होगी। और हमें तो चित्त एकाग्र करना है, इसलिए जिसमें सद्गुणी हानि वृद्धि नहीं है ऐसा मैं हूं। और ऐसा कोई पदार्थ है, जमीन पदार्थ तो कोई नहीं है, जगत में सद्गुणी हानि वृद्धि से बेहद कोई नहीं है। और दृष्टि के विषय सद्गुणी हानि वृद्धि नहीं लेना, ये कितने मार्मिक है जगदीश भाई, ये इतना मार्मिक है कि है और नहीं लेना। मैंने दृष्टि का विषय माने क्या, दृष्टि का विषय माने है थोड़ी है, दृष्टि में क्या लेना उसका नाम दृष्टि का विषय है, उसमें क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं जी साहब बोले कोई मान लो कर्म का बना है कि नहीं है और बातें हैं कि नहीं है और द्रव्य में पर्याय है कि नहीं है, लेकिन सद्गुणी हानि वृद्धि तो हर द्रव्य में हर गुण में हर पर्याय में निरंतर बनी हुई है ना, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार। और जब तान शुद्ध पर्याय तो भगवान आत्मा में शामिल है और सद्गुणी हानि वृद्धि शामिल नहीं। जब उनको नाम ही हानि वृद्धि, हम ज्यादा बात क्या करें है? हमारा आत्मा तो जिसमें ना हानि होती ना वृद्धि होती है, मुंडी गैया सदा कलोर, जो हमेशा एक सा रहता है वह मैं हूं। देखो कैलाश चंद तो बच्चे से जवान हो गया, अब जवान से ये बाल सब साफ हो गए, उड़ गए कि चले गए, अभी बड़ा पाने लग गया, क्या हुआ है, है? क्यों, लेकिन अंदर का जो आत्मा है वो तो एक सही रहा ना, कि नहीं नहीं साहब पहले कुछ समझता नहीं था और बाद में समझने लगा, ये जो नहीं समझता था और समझने लगा वो तो है अन्य अन्य। समझ गए ना, और उन दोनों में जो कॉमन था वो है अनन्य। तो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा अनन्य है, वो है। दो बातें हुई ना, कौन कौन सी पहली अवध स्पष्ट अनन्य, और तीसरी क्या है सद्गुणी हानि वृद्धि जिसमें नहीं है उसका नाम है नियत। तो सारे विशेषों से रहित है, गुण भेद प्रदेश भेद पर्याय भेद ये सारे भेदों से जो रहित है उसका नाम है अवशेष। और संग असंयुक्त, तो ये अभी लोग मूल राग देश रह गए थे, तो मूल राग देश में जिसमें नहीं है उसका नाम है असंयुक्त। अवध स्पष्ट में तो पद्रुप आया, और असंयुक्त में मूल राग देश से भिन्नपना आया, अनन्य में ये मनुष्यादि पर्यायों में से भिन्नपना आया, और अवशेष में गुण भेद प्रदेश भेद से भिन्नता आई, और नियत में सद्गुणी हानि वृद्धि से रहता आई। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। सामान्य पांचों की चर्चा की, अब विशेष चर्चा करते।